शशिव्रता विवाह का काव्य षष्ठ। चंद्रबरदाई कृत संपूर्ण पृथ्वीराज रासो सामंती सभ्यता संस्कृति के चरित्र को दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के माध्यम से रूपायित करने वाला एक सफलतम युग काव्य है। यह परंपरागत रासक शैली में रचा गया है। इसके समग्र स्वरूप में यद्यपि अनेक प्रकार की अनुषांगिक कथाएं भी कही गई हैं, पर इन सबका केंद्र चौहान पृथ्वीराज ही है। शशिव्रता विवाह मूल रासों का एक प्रमुख अंग एवं अध्याय है। इसके माध्यम से वस्तुतः समूचे पृथ्वीराज रासों के काव्य सौष्ठव, काव्य कथानक के केंद्रीय भाव और आलोचना से संबंधित जो कुछ भी हो सकता है उन सबको जाना परखा जा सकता है। वस्तु के उद्घाटन और प्रस्थापना के लिए कवि ने प्रधानतः शुक्चुकी संवाद की योजना सर्वत्र की है। आलोच्य प्रसंगों में भी यह योजना स्पष्टतः विद्यमान है। काव्य सौष्ठव कल्पना की सुंदर योजना। कवि ने शशिव्रता पृथ्वीराज विवाह के लिए बड़ी कुशलता से श्रुत्यानुराग व पूर्वराग प्रसंग की अंत योजना की है। गंधर्व का हंस बनकर प्रस्तुत होना कवि कल्पना की परंपरागत पर सुंदर योजना है, जिसके कारण वस्तु के स्वरूप विधान में भावी की प्रत्यक्ष योजना हो जाती है। इस योजना से पृथ्वीराज द्वारा शशिव्रता का अपहरण करना असामान्य न होकर सामान्य एवं सुंदर कृत्य बन गया है। पूर्वराग की कल्पना से भी सभी कुछ को बड़ी ही आकर्षक एवं सुंदर बना दिया है। कवि ने शशिव्रता को एक मुग्धाया वह संधि प्राप्त नायिका के रूप में बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। काका और सूरज बिच उदय अस्त दुहबेर, बर शशिव्रता शोभई मनो श्रृंगार सुवेर। चंद्र द्वारा वर्णित पृथ्वीराज चौहान की अन्य नायिकाओं की तुलना में शशिव्रता के तन पर पूर्ण यौवन का आगमन हो रहा है। इस यौवनागम की तुलना बसंत से करते हुए कवि कहता है, पत्त पुरातन झरिग पत्त अंकुर उठ तुच्छ, ज्यो सौसव उत्तरीय चढ़िय वैसव किशोर कुछ, शीतल मंद सुगंध आह रतिराग अचानम, रोम रास कुछ नितम तुच्छ सरकानम, बड्ढ न सीत करे छिन भय लज्ज मांग ढकने फिरे, ढकय न पत्त ढकय कहे बन वसंत मंत जो करे। राजकुमार शशिव्रता के मन में पूर्वराग के कारण अपने प्रिय पृथ्वीराज का एक कल्पित चित्र विनिर्मित हो चुका है। जब उसका पृथ्वीराज के साथ प्रथम साक्षात्कार होने लगता है तब उसकी मानसिक स्थिति जिस अपूर्व रस में विनमज्जित हो रही है, कविचंद ने इसका बड़ा ही रोमांचक एवं पूर्ण मनोवैज्ञानिक चित्र काव्य में प्रस्तुत किया है। यो करत दुत्य वियो कथ श्रवण सुनिबंत, जाकौ ते पतिवृत्त लिय सव आयो कलिकंत, श्रमण नयन को मेल कय भय चंचल चल चित्त, श्रोतान दिष्टान और मिलि पुच्छय धीमित, कर्ण प्रयत्न कटाक्ष सुरंग विराज ही, कछ पुच्छन को जाहि पय पुच्छन लाज ही, नयन सैन की बात जो श्रवणन सौ कहें, काम किधो पृथ्वीराज भेद करिनाल हैं। कवि ने वास्तविक प्रेक्षा के द्वारा इस वर्णन में जो उत्कर्ष एवं चमत्कार उत्पन्न किया है वो दर्शनीय है। अक्षरितन मज्ज बरे बर जज्ज चित्ते भज्जन मंज, कायरन रन मंच तिज्ज सलज्जम स्वामी सुकज्ज भासज्जय, जय दड्ढ सुसज्जे हत्थ भज्जे छिन्नन छज्जे रिन रज्जे। यह तो हुआ विरत पूर्ण वर्णों को प्रस्तुत करने वाले पुरुष ओजस्वी भाषा का उदाहरण। अब एक कोमल कांत भावों को व्यक्त करने में सक्षम भाषा का भी उदाहरण देखें। कलिंद सीप केशम अनंग अंग लोभयम, उठंत कुंभ कुचयम उपंग कवि सुजच्यम, मनोरंजत बालकी धरि सुवान लालाप्र की सुमत रोम राजयम प्रदीप पंति धांजयम। भाषा के समान प्रयोगों में भी कविवर चंद ने शशिव्रता विवाह प्रसंग में छंद वैविध्य में भी अपनी पूर्ण प्रगल्भता का परिचय दिया है। छंद शास्त्र का उन्हें ज्ञान तो है ही, रस भाव के अनुकूल छंद का प्रयोग करने की कला में भी वे अपना सानी नहीं रखते। सत्य तो यह है कि उनकी भाषा की भंगिमा एवं तेवर भी छंदानुकूल ही प्रभावित होने लगते हैं और विचारों भावों की सरणियों को समेट कर अनवरत प्रवाहित होते रहते हैं। इस संबंध में आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नवर सिंह ने ठीक ही लिखा है, छंद भाषा की गति तथा भंगिमा है। इसलिए छंद जैसे भाषा पर अचूक अधिकार रखने वाले कवि की छंद भंगी स्वाभाविक है। वस्तुतः हिंदी में छंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ धनाधन भाषा नए नए छंदों की गति धारण करती चलती है, और विशेषता यह है कि इस बलखाती हुई नदी में बहते हुए चित्त को कोई मोड़ नहीं खटकता। छंद परिवर्तन के प्रवाह में सहज आत्मविस्मृति का ऐसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसलिए तो सरोज के रचयिता श्री शिव सिंह सिंगर ने छंद को छप्पयों का राजा कहा है। इस राजा ने अकेले सरस्वती विवाह प्रसंग में जितने सुकर और सुगढ़ छंदों का प्रयोग किया है, उनकी संख्या ही वस्तुतः चौंका देने वाली है। उन्होंने इस प्रसंग में क्रमशः दोहा, चौपाई, कवित, त्रोटक, भ्रजंगी, नाटक, गाथा, चंद्रायन, कुंडलियां, नाराज, अरित्व, त्रिभंगी, मृल्वी, रसावल जैसे 14 छंदों का अनेकश प्रयोग किया है। प्रयोग में सहजतान, स्वाभाविकता, तल्लीनता, अपनत्व एवं स्वाभाविकता है। ऊपर प्रदत्त विद्वानों के मत को जान लेने के बाद वस्तुतः कवि छंद के छंद प्रयोग के बारे में और कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता। अलंकार योजना। सरस्वती विवाह प्रसंग में जहाँ तक अलंकार योजना एवं प्रायोगिकता का प्रश्न है, उसमें भी कवि छंद ने वस्तुतः विविधता एवं अनेकता का परिचय दिया है। फिर भी कहा जा सकता है कि आलोच्य प्रसंग के संदर्भ में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास उनके सर्वाधिक प्रिय अलंकार रहे हैं। सौंदर्य श्रृंगार वर्णन हो या वीरत्वपूर्ण वर्ण युद्ध वर्णन, सानुप्रासंगिक एवं उत्प्रेक्षा सर्वत्र असंदिग्ध रूप में वर्तमान है। इन दो अलंकारों के बाद आलोच्य प्रसंग में उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग दिखाई देता है। इन अलंकारों के क्रम से एक उदाहरण देखें। उत्प्रेक्षा। मिलहत्थन सत्थन वत्थ धारे, मनोबारुण मत्त गज दंत न्यारे, अलीन जुत्थ आवरम मनोविहंग सावरम, एक कठ्य सारकर खोकीय दो पान, बनहो मत अनंग द्वय तित्त छट्ट जमजान। उपमा। शशवृत्त बाल संभ समह मिलिय गठिबंधन सुदृढ़, बाल बेन लोरी करे छिट्टे चिहर सुभाय, कनक थम्ब ने उतरी उरग सुता दर्शाय। अनुप्रास। प्रत्येक पद इसका उदाहरण है, फिर भी एक विशेष पद की सानुप्राणिक योजना देखिए। जरि जे हरि पाई जराय जरा, सज भूषण नभ मनो उत्तरी। इन अलंकारों के अतिरिक्त जिन अन्य अलंकारों का उपयोग सरस्वती विवाह प्रसंग में हुआ है, उनके क्रमशः नाम है यमक, श्लेष, रूपक, संदेह, स्वभावोक्ति, निदर्शना और अतिशयोक्ति। इनमें से अतिशयोक्ति अलंकार की योजना समूचे वीरत्व एवं रूप सौंदर्य तथा श्रृंगार वर्णनों में स्पष्ट देखी जा सकती है। यमक। हार हार मंडहीय गुत्थिय हार हर हार, यहाँ हार शब्द के प्रयोग में यमक अलंकार की योजना एकदम स्पष्ट है। रूपक। मनमत्थ महावत बंध अति मनमत्थव उनकौ धरय, यहाँ मनमत्थ महावत में रूपक अलंकार की स्पष्ट योजना की गई है। सांग रूपक अलंकार की योजना कहीं पद्यों में बड़ी सफलता के साथ हुई है। एक स्थान पर तो कवि ने युद्ध को यज्ञ का रूपक देकर सांगोपांग वर्णन बड़ा ही भव्यता से किया है। जनिज्जय जिस बंधु नव चंदन तकियो दिए, यहाँ बंधु शब्द में वधु होने के कारण श्लेष की योजना एकदम स्पष्ट है। व्यतिरेक अलंकार का भी उदाहरण देखें। आवृत्त वृत्त गुण निग्रह राग, देव युद्ध देव तह साग। अन्य अलंकारों का भी उचित ढंग से प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग प्रमाणित करता है कि कवि चंद शास्त्र के समान अलंकार शास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान था। फिर ध्यातव्य तथ्य यह भी है कि कविचंद ने आचार्य केशव के समान अलंकारों की योजना में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं आने दी है, रसाभाव भी नहीं होने दिया है। भाव, विचार, दृश्य आदि के वर्णनों के साथ अलंकारों की संगति पूर्णतया बैठती है। काव्य के बीच में कवि ने अन्य विविध विषयों के ज्ञान का भी परिचय दिया है। जैसे एक स्थान पर ग्रहचाल के प्रभाव से उन्होंने अपने सौंदर्य वर्णन में प्रभ विष्णुता लाने का भी कृत्रिम एवं सफल प्रयोग किया है। अजय प्रसाद द्विवेदी ने चंद और उसकी कविताएं के बारे में निम्नलिखित रूप में अपना मंतव्य व्यक्त किया है, वह पूर्णतया तर्क संगत एवं सार्थक है। उसमें कविता का सहज प्रवाह है। यहाँ चंद्रबरदाई ऐसे सहज प्रफुल्लित कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस खींचते हैं। यह जीवन रस शशिभ्रता विवाह प्रसंग अंतःसलिला के रूप में सर्वत्र अनवरत प्रवाहित होता देखा जा सकता है। वस्तुतः कविचंद की कविताई का सौष्ठ अनुपम है। वह प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की दलदली भूमि को संचित करने के लिए न होकर काव्य रसकों एवं मर्मज्ञों के पूर्ण आस्वाद के लिए है। यह आस्वाद्यता की पौष्टिकता ही उसकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता रेखांकित की जानी चाहिए। गीता और श्रृंगार चित्रणों में तो उसकी महिमा अंतर्हित है और अपने युग के वास्तविक वीरता और प्रेम चित्रणों में भी। सामंत युग का समूचा स्वरूप अपनी समग्र भव्यता के साथ यहाँ साकार हो उठा है। निश्चय ही यह उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्व परंपराओं का वेद कोश है और मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास है। पर मिलाकर पृथ्वीराज रासो अपनी समग्रता में और शशिभ्रता विवाह प्रसंग अपनी अंशता में वस्तुतः एक बेजोड़ काव्य है। वह युग युगों की अतीत सभ्यता संस्कृति और भारतीय समाज का एक ऐसा काव्यात्मक दर्पण है जहाँ सभी कुछ पूर्ण निश्चलता के साथ स्पष्ट झलक रहा है। उस झलक में ही इसकी समग्र सफलता और सार्थकता है।